नमस्कार, मैं ग्राम मान्य से विश्वजीत पात्र। आज हम है हसल में, हसल जो सरायकला डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, और आज हम एक संस्था में आए हैं, स्पार संस्था। और स्पार संस्था और TSRDS का द्वारा एक चलाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है रिश्ता। हम रिश्ता प्रोजेक्ट का जोनल कोऑर्डिनेटर गोपाल किस्कु जी से बात करेंगे। गोपाल जी, झारखंड मोबाइल वाणी में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
आप ये बताइए कि किस प्रकार एक्टिविटीज आपका इस प्रोजेक्ट में चलाया जाता है?
यहाँ हम कई तरह के काम करते हैं, लेकिन विशेषकर जब हम रिश्ता परियोजना की बात करते हैं तो इस परियोजना में हम सिर्फ 12 से 19 साल के किशोर किशोरी पर काम कर रहे हैं, जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रयास है।
आपको क्या लगता है कि इसके बारे में उनको जानकारी देना जरूरी है?
हाँ, क्योंकि हाल ही में हमने WHO का जो रिपोर्ट देखा था उसमें काफी सारी समस्याएं किशोर किशोरी पर देखा गया था, जिसमें हमारे पूरा पॉपुलेशन का 22% जो है किशोर किशोरियां हैं। उसमें अर्ली मैरिज है, HIV एड्स है, एडिक्शन है, साथ साथ RTI स्टेज है, लोग यौन रोग से ग्रसित हैं, जो हमारे किशोर किशोरियों पर ज्यादातर इनका प्रकोप है।
ये जो इतना सारी समस्या के बारे में बताए आप, RTI STI बताए आप, यौन रोग बताए आप, HIV एड्स के बारे में बताए, चाइल्ड मैरिज बताए, तो आपका जो एरिया है जहाँ पे आप इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाते हैं, तो कौन सा इशू जो बर्निंग इशू आप कहेंगे?
सबसे पहला बर्निंग इशू था हमारा RTI STI, जो काफी सारे बच्चों को हमने जो KPS किया था, नॉलेज एंड प्रैक्टिस सर्वे, उसमें बहुत ज्यादा किशोर किशोरी पर हमने पाया कि जो यौन रोग से ग्रसित है लेकिन अपने समस्याओं को किसी के सामने भी रख नहीं पाते थे। सबसे पहला बर्निंग इशू जो है हमारा ये यौन रोग है, RTI STI जिसको हमने कहा था कि RTI STI इतने हैं कि किशोर किशोरी पर बहुत सारे समस्या है, यौन रोग से बहुत सारी समस्या है, लेकिन वो लोग होता क्या है कि सर के साई नेचर के चलते या फिर नहीं रख पाने के चलते या समाज के डर से वो लोग एक दूसरे पर चर्चा नहीं करते थे, जिसके वजह से वो धीरे धीरे विकराल रूप ले लेता था। और अंत में जब वो जब सबको पता चलने लगता है, और उस समय वो जब डॉक्टर के पास जाते थे तो काफी ज्यादा देर हो जाती थी, और तब तक वो समस्या बहुत बड़ा रूप ले लिया होता है।
तो इस प्रोग्राम के दौरान आप किस प्रकार सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी जो गांव का लोग है, जो कम्युनिटी, आप लोगों का जो टारगेट ऑडियंस है, उनको क्या क्या सपोर्ट आप देते हैं?
सबसे पहले तो हमने प्रयास किया कि हम अपने टारगेट ग्रुप को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद किसी भी गांव के जो भी लीडिंग पर्सन थे, वो PRI मेंबर हो या गांव के प्रधान हो या कोई नेता हो या कोई जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, जैसे गांव के माझी हुए या पंडित हुए, इन लोगों से हमने इन विषय पर चर्चा किया, उनको ये आंकड़ा दर्शाया। आंकड़ा दर्शाने के बाद उन लोगों से सपोर्ट लिया, और हमारे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी हमें सहयोग किए, और सहयोग करने के साथ साथ हमने देखा कि हमारा ये 1 साल पूरा हो गया है, और इस 1 सालों में हमने देखा कि जितने भी किशोर किशोरियों के पास इस तरह की जो समस्या आती थी वो अब हमारे सामने खुलकर रखते हैं और इन पर खुलकर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जो भी समस्या हो बेहिचक बिना शर्म से वो हमारे समस्याओं को रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा ही है तो हम टेक्निकल सपोर्ट के रूप में PSC या CSC से कांटेक्ट करके समय समय पर हेल्थ मेला या एक किशोर किशोरी में इनको हम जब जब गांव के जो लोग हैं उन लोगों से भी मिलकर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ टेक्निकली सपोर्ट के रूप में हम गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़ते हैं, और PSC या CSC से मिलकर समय समय पर हम गांव में एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो भी समस्याएं होती है उनके यौन रोग से संबंधित या किशोर किशोरियों को जो किसी भी तरह की समस्या हो वो खुलकर रखते हैं और अपना इलाज करवाते हैं।
तो आप जो बोले हैं कि जिसका इस प्रकार समस्या होता है, आप गवर्नमेंट जो सर्विस है उनके साथ लाइजनिंग करवा देते हैं, और गांव का जो बच्चा लोग है, किशोर किशोरी है, वो लोग अपना बात खुल के बोलते हैं आप लोगों को, तो उनका जो समस्या है वो आपको जानकारी एकदम सही समय में, शुरुआती समय में मिल जाता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ का जो सरकारी हेल्थ सर्विस है वो किस प्रकार है, उनको क्या इलाज मिल जाता है?
असल इनको लाइजनिंग करने के लिए हमें CHC या PHC से एक कांटेक्ट करना पड़ता है, उनके साथ एक संपर्क स्थापित करके हम एक समय से निर्धारित करते हैं, और उसमें तो सरकार ने भी शायद ये प्रोग्राम रखी है कि आपको भी समय समय पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना है, जिसमें उनका भी अपना कार्यक्रम चलता है और हमारे ओर से हम जितने भी किशोर किशोरियां जो हमारा टारगेट एरिया होता है, उस टारगेट एरिया के जितने भी किशोर किशोरियों के किसी भी तरह की समस्या हो, यौन रोग से हो या ऐसे सामान्य समस्या, उनके लिए हम उनको प्रेरित करते हैं और वहाँ भेजते हैं। और जब जब हम कार्यक्रम को इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें उन लोगों का सहयोग रहा है।
क्या ऐसा कुछ आंकड़े है आपके पास, ये इतना सारी किशोर किशोरी के जिनका इस प्रकार कुछ लक्षण दिखाया जा रहा था और इलाज लेने के बाद वो लोग अभी ठीक है?
हमारे पास अब तक हमने 6 हेल्थ कैंप कर चुका है। उस हेल्थ कैंप में अब तक हमने हमारे ऑपरेशनल एरिया में हम 5 पंचायत के 54 गांव में काम कर रहे हैं, जिसमें 5 पंचायत में हमने 6 हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया अब तक। उन 6 हेल्थ कैंपों में 319 हमारे पास किशोर किशोरियां आए हैं और अन्य तो आए हैं, उनका आंकड़ा एग्जैक्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन 319 हमारे पास किशोर किशोरियां आए, जिसमें 31 को हम लोगों ने CHC जो उपस्थित डॉक्टर थे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर रेफर किया, जिसमें से 31 में से 9 जो यौन रोग से संबंधित थे उन लोगों का इलाज चला है और फॉलोअप में ये पता चला है कि वो लोग अभी स्थिति ठीक है।
आपका और एक जो मुद्दा बोले कि कम उम्र में शादी, क्या कम उम्र में शादी होने में क्या हानि होता है?
कम उम्र में शादी होने से सबसे पहली बात तो कि कम उम्र में अगर शादी हो गई तो कम उम्र में ही माँ बनने के लिए माँ बन जाती है और कम उम्र में माँ बनने से बच्चा और जच्चा दोनों को ही जान का खतरा रहता है, जिसमें अगर किसी तरह बच्चा हो भी गया तो उन बच्चों वो बच्चे कुपोषित होंगे और माँ को भी जान का खतरा रहता है ड्यूरिंग डिलीवरी।
गोपाल जी, झारखंड मोबाइल वाणी में आपका योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, आपको भी धन्यवाद।